भूमिकास्थ विषयानुक्रमणी विषय पृष्ठ संख्या वेद पृष्ठ संख्या 9 वेद के विभाग पृष्ठ संख्या 10 संहिता ग्रंथ पृष्ठ संख्या 12 ब्राह्मण ग्रंथ पृष्ठ संख्या 18 ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पृष्ठ संख्या 19 शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण पृष्ठ संख्या 20 कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण पृष्ठ संख्या 20 सामवेदी ब्राह्मण पृष्ठ संख्या 21 अथर्वेद वेदीय ब्राह्मण पृष्ठ संख्या 22 आरण्यक ग्रंथ ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ 23 यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ 23 सामवेद के आरण्यक ग्रंथ 24 उपनिषद ग्रंथ 24 1 ऐत्रेयोपनिषद 24 2 कौशितकी उपनिषद 24 3 श्वेता श्वेतरोपनिषद 25 4 कठोपनिषद 25 5 तैत्रियोपनिषद 25 6 मैत्रायणोपनिषद 25 7 बृहदारण्यकोपनिषद 26 8 ईशावास्योपनिषद 26 9 केनोपनिषद 26 10 मुंडकोपनिषद 26 11 मांडुक्योपनिषद 26 12 प्रश्नोपनिषद 27 वेदांग 27 शिक्षा 28 कल्प 29 व्याकरण 30 निरुक्त 31 छंद 32 ज्योतिष 33 प्रातिशाख्य 34 ऋग्वेद प्रातिशाख्य 34 तैत्रीय प्रातिशाख्य 34 शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य 35 शौनकिया चतुर्ध्यायिका 36 अथर्व प्रातिशाख्य 36 ऋक्तंत्र 36 देवता परिचय 37 अग्नि 37 सविता 39 विश्वदेवा 40 विष्णु 41 रुद्र 42 इंद्र 43 उषा 45 पर्जन्य 46 वरुण 47 अक्ष 49 पुरुष 51 हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति 52 वाक 53 संज्ञान 54 शिव संकल्प 54 पृथ्वी 55 भूमिका वेद मंत्र ब्राह्मणी और वेद नामधेयम के अनुसार मंत्र और ब्राह्मणात्मक शब्द राशि को वेद कहा जाता है। मननात मंत्राह के अनुसार जिनके द्वारा यज्ञ यागों का अनुष्ठान निष्पन्न होता है तथा जिनमें उल्लिखित देवताओं की स्तुति का विधान किया जाता है उन्हें मंत्र नाम से अभिहित किया जाता है। मंत्र का संकलन संहिताओं में किया गया है। ब्राह्मण से ग्रंथ विशेष अभिप्रेत है। बृहवर्धने धातु से निष्पन्न ब्राह्मण शब्द का अर्थ है वर्धन विस्तार या यज्ञ। अतः यज्ञ की विधि क्रियाओं को बतलाने वाले ग्रंथ सामान्य रूप से ब्राह्मण कहे जाते हैं। ब्राह्मण के तीन भाग हैं ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। इस प्रकार वेद के अंतर्गत संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद समाहित होते हैं। वेदांग वेद के उपकारक हैं अतः वैदिक वाङ्मय में उनका भी समाहार किया जाता है। विद ज्ञाने धातु से घञ् प्रत्यय लगकर निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, किंतु सभी ज्ञान की वेद संज्ञा नहीं है। सायण के अनुसार इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारयोर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः, अर्थात जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट वस्तु के परिहार के कारणभूत अलौकिक उपाय को बतलाता है वह वेद है। आचार्य विष्णु मित्र के अनुसार विद्यते जायते लभ्यते धर्मादि पुरुषार्थ इति वेद, अर्थात जिसके द्वारा धर्मादि चारों पुरुषार्थ प्राप्त किए जाते हैं वह ज्ञान वेद कहलाता है। यद्यपि वेद ज्ञानार्थक है किंतु उसका अभिधान संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद के लिए किया गया है। तदुपकारक होने के कारण वेदांग भी वैदिक वाङ्मय में समाहित है। चार वेद मंत्रों के समूह का नाम संहिता है। पहले वेद एक ही था। यज्ञ के अनुष्ठान को दृष्टि में रखकर भिन्न भिन्न ऋतुजों के उपयोग के लिए वेद व्यास ने वेद का चतुर्धा विभाजन किया। ऋत्विक होता के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन ऋग्वेद संहिता में, अध्वर्यु ऋत्विक के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन यजुर्वेद संहिता में, उद्गाता ऋत्विक के लिए सामवेद संहिता में तथा ब्रह्म ऋत्विक के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन अथर्वेद संहिता में किया और इनको क्रमशः पैल वैशंपायन सुमंतु और जैमिनी को पढ़ाया। चार ऋत्विक। वस्तुतः यज्ञ के लिए चार ऋतुजों की आवश्यकता होती है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। एक हौत्र कर्म का संपादन होता नामक ऋत्विक करता है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करके उपर्युक्त देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने का कार्य करता है। वह याज्ञा तथा अनुवाक्या ऋचाओं का पाठ करता है, जिसका पारिभाषिक नाम है शास्त्र। दो अध्वर्य यज्ञ के मुख्य कर्मों का निष्पादक प्रधान ऋत्विक होता है, उसी के विशिष्ट कर्म के लिए यजुर्वेद की संहिता संकलित की गई। तीन उद्गाता तत्त देवताओं की स्तुति में सामवेद की संहिता के मंत्रों का गायन करता है, जिसका पारिभाषिक नाम स्तोत्र है। चार ब्रह्मा ऋत्विक का कार्य यज्ञ की बाहरी विघ्नों से रक्षा करना, स्वरों में सामान्य त्रुटियों का परिमार्जन करना तथा यज्ञ अनुष्ठानों में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दोषों के लिए प्रायश्चित का विधान करना है। इसलिए ब्रह्मा यज्ञ का अध्यक्ष होता है, जिसका कार्य यज्ञ अनुष्ठानों को पूर्ण रूपेण निरीक्षण तथा त्रुटि मार्जन करना होता है। यज्ञ निरीक्षण का प्रधान उत्तरदायित्व संभालने वाला ब्रह्मा वेद त्रय का ज्ञाता होता है, परंतु उसका विशिष्ट वेद अथर्ववेद ही है। वेद त्रयी ऋक, यजुः और साम, इस स्वरूप के भेद से वेद का त्रिधा विभाजन हुआ है। तेषां ऋक् यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था, अर्थात जिन मंत्रों में अर्थवशात पादों की व्यवस्था होती है, उन छंदोबद्ध मंत्रों को ऋक् या ऋचा कहा जाता है। गीतीषु सामाख्या, अर्थात इन ऋचाओं पर जो गायन गाए जाते हैं, उन गीति रूप मंत्रों को साम कहते हैं। शेषे यजुः शब्दः, इन ऋचाओं और सामों से अन्य मंत्रों को यजुष कहा गया है। गद्यात्मको यजुः के अनुसार यजुष गद्यात्मक होते हैं। इस प्रकार मंत्रों की रचना तीन विधाओं में हुई है, ऋक, यजुष और सामन। इन्हीं के आधार पर वेद को ऋक, यजुः, साम इन तीन भागों में विभक्त किया गया है। ऋग्वेद ऋचात्मक, सामवेद सामात्मक, ज्ञात्मक और यजुर्वेद यजुषात्मक गद्यात्मक है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अथर्वेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं है। वस्तुतः अथर्वेद के मंत्रों का छंदोबद्ध भाग ऋक् और गद्यात्मक भाग यजुष के अंतर्गत समाहित है। वेद के विभाग, सभी वेदों के मुख्य चार विभाग हैं, एक संहिता, दो ब्राह्मण, तीन आरण्यक, चार उपनिषद। यहाँ संहिता का अर्थ है वह ग्रंथ जिसमें वेद मंत्र संकलित किए गए हैं। ऋक, यजुष, साम तथा अथर्व, अथर्वन रूपात्मक मंत्रों के चारों संकलन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद ही संहिता के नाम से कहे जाते हैं। संहिता, संहिता ग्रंथों की संख्या चार है, जिस ग्रंथ में विभिन्न ऋषियों द्वारा दृष्ट ऋक् मंत्रों का संकलन किया गया है उसे ऋग्वेद संहिता, जिस ग्रंथ में यज्ञ याग आदि में प्रयुक्त होने वाले यजुष मंत्रों का संकलन किया गया है उसे यजुर्वेद संहिता, जिस ग्रंथ में यज्ञ याग आदि में गाए जाने वाले साम मंत्रों का संकलन हुआ है उसे सामवेद संहिता, एवं शांतिक तथा पौष्टिक कार्यों से संबंधित मंत्रों का जो संकलन तैयार किया गया है उसे अथर्वेद संहिता कहा गया। यद्यपि ऋक् लक्षण पद्यात्मक मंत्र चारों संहिताओं में प्राप्त होते हैं, फिर भी जिस संकलन में केवल ऋक् मंत्रों का ही संकलन है उसे ऋग्वेद संहिता कहते हैं। जिस संकलन में यजुष मंत्रों की अधिकता है और साथ ही कतिपय ऋक् लक्षण युक्त मंत्र भी गद्य रूप में पढ़े जाते हों वह संकलन यजुर्वेद संहिता कहलाता है। इसी प्रकार स्तोम एवं गान के आधारभूत कतिपय ऋचाओं एवं स्तोम लक्षण कतिपय मंत्रों के साथ ही उसमें साम का ही संकलन प्राधान्य प्राप्त कर चुका है उसे सामवेद संहिता कहते हैं। इस प्रकार पद्य, गद्य एवं साम के आधार पर जो संहिताएं संकलित की गई उनका नामकरण तो हो गया, परंतु अन्य संकलन का नामकरण क्या हो, इस समस्या का समाधान उन मंत्रों के दृष्टा अथर्वा और ऋषियों के नाम से अथर्वांगिरस संहिता अथवा अथर्वेद संहिता नाम रखकर कर लिया गया है। ब्राह्मण, संहितागत मंत्रों के व्याख्या पर ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। इन ग्रंथों में संहितागत मंत्रों की व्याख्या के साथ ही उनका विविध याज्ञिक कर्मों में विनियोग भी बतलाया गया है। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं जिनमें मंत्र और यज्ञ अर्थ अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या के साथ ही यज्ञ कर्मकांड की व्याख्या तथा उनका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना मुख्य उद्देश्य समझा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की वैज्ञानिक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। विश्व साहित्य में गद्य का आविर्भाव तो यजुर्वेद से ही हो गया था, परंतु उसे परिष्कार मिला है ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में विविध प्रकार की ललित कथाओं के माध्यम से यज्ञ में होने वाले विविध कर्म कांडों का औचित्य समझाने का सफल प्रयास किया गया है। सभी ब्राह्मण ग्रंथ गद्यमय हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का विधान कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसमें कौन कौन से साधन आवश्यक हैं, उन यज्ञों के अधिकारी कौन हैं, इत्यादि विषयों को सुलझाने का प्रयास भी किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विवेच्य विषय है विधि। स्थान स्थान पर अनेक आख्यान प्रस्तुत करके यजमानों के अंतःकरण में यज्ञ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना भी ब्राह्मण ग्रंथों का एक प्रयोजन है। यत्र तत्र कतिपय शब्दों का निर्वचन करके ये ब्राह्मण ग्रंथ अपने उद्देश्य सिद्धि में सफल हुए हैं। सभी संहिताओं के अलग अलग ब्राह्मण अन्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। आरण्यक, जिन ग्रंथों का प्रणयन विशेष रूप से अरण्य में पढ़ने के लिए किया गया था, वे आरण्यक कहलाएं। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ न होकर उनके अंतर्गत विद्यमान आध्यात्मिक तथा दार्शनिक तत्वों की मीमांसा है। प्राण विद्या की भी महत्ता इन आरण्यक ग्रंथों में प्रतिपादित की गई है। आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट भी कह सकते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान धारा को सरल प्रवाही रूप में प्रस्फुटित करने का गौरव उपनिषद साहित्य की ही प्राप्त हुआ है। वेद का अंतिम भाग होने से एवं संहिता ब्राह्मण आदि ग्रंथों के सारभूत तत्व ज्ञान को प्रतिपादन करने के कारण ही उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है। गीता तथा ब्रह्मसूत्र के उपजीव्य ग्रंथ उपनिषद ही हैं। उपनिषद वांग्मय भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक चिंतन का चरम निदर्शन है। दारा शिकोह जैसे इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने भी उपनिषदों को अपने अध्ययन का प्रधान विषय बनाया है। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में भी उपनिषद विश्व के आध्यात्म गुरु का स्थान प्राप्त कर चुके हैं। वेदों के उपर्युक्त चतुर्धा विभाग का एक विशेष कारण भी है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा संपूर्ण जीवन चार आश्रमों में विभाजित था। एक ब्रह्मचर्य, दो गृहस्थ, तीन वानप्रस्थ एवं चार संन्यास। इन आश्रमों का वर्ष विभाजन भी किया गया था। सामान्यतः प्रारंभ से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम, तत्पश्चात 75 वर्ष की अवस्था तक वानप्रस्थ आश्रम और शेष आयु संन्यास आश्रम में व्यतीत करने का विधान था। ब्रह्मचर्य आश्रम में संहिता ग्रंथों का पढ़ना एवं कंठाग्र करना विहित था। गृहस्थाश्रम में ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हुए यज्ञ आगादी करने का विधान था। वानप्रस्थाश्रम में पति पत्नी को पुत्रों पर परिवार का भार सौंपकर जंगल में जाकर अरण्य ग्रंथों का अध्ययन एवं तदनुरूप कार्य करना पड़ता था। जीवन की अंतिम अवस्था में संन्यास ग्रहण करके केवल आध्यात्मिक सुधा धारा का पान करने के लिए उपनिषदों का अध्ययन, मनन एवं प्रवचन करते हुए लोकोपकार करने का विधान था। संहिता ग्रंथ एक, ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद सूक्तों का वेद है। सूक्त का अर्थ है सुभाषित या उत्तम वचन, अर्थात जिन मंत्रों में उत्तम वचन होते हैं उनके समूह को सूक्त कहा गया है। वैदिक साहित्य की समस्त रचनाओं में ऋग्वेद संहिता सर्वाधिक प्राचीन, महत्वपूर्ण तथा मौलिक है। इसमें किसी भी विद्वान को किंचित मात्र भी प्रतिपत्ति नहीं है, क्योंकि लगभग संपूर्ण सामवेद 75 मंत्रों को छोड़कर और यजुर्वेद का पद्यात्मक अंश तथा अथर्वेद के कतिपय अंश ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद संहिता को संक्षेप में ऋग्वेद भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि संपूर्ण ग्रंथ छंदोबद्ध है। छंदोबद्ध या पद्यात्मक मंत्रों को ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋचाओं का विशाल संग्रह ही ऋग्वेद संहिता है। महाभाष्य में पतंजलि ने इस वेद की 21 शाखाओं का निर्देश किया है। एक विंशतिधा वाह्यच्यम, किंतु परवर्ती ग्रंथों में केवल 5 शाखाओं का ही उल्लेख प्राप्त होता है। ये शाखाएं हैं शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन, किंतु संप्रति उपलब्ध एवं प्रचलित शाखा शाकल है। इस शाखा की संहिता में कुल मिलाकर 1017 + 11 बालखिल्य = 1028 सूक्त हैं। इस ग्रंथ में लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद संहिता का दो प्रकार से विभाजन किया गया है, अष्टक्रम और मंडल क्रम। एक अष्टक्रम, संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 64 अध्यायों में विभक्त है, प्रत्येक अध्याय अवांतर विभागों में विभाजित है, जिसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग ऋचाओं के समुदाय का नाम है। वर्ग में ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं है, ऋग्वेद में वर्गों की कुल संख्या 2006 है। दो मंडल क्रम, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त और सूक्तों के अंतर्गत मंत्र अथवा ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का यह विभाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है, 10 मंडलों में विभक्त होने के कारण ऋग्वेद को दशतई भी कहा जाता है। ऋग्वेद कुल 58 अनुवाक, 1017 सूक्त है। इन सूक्तों के अतिरिक्त 11 सूक्त बालखिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएं हैं और ऋचाओं में कुल शब्दों की संख्या 153,826 तथा अक्षरों की संख्या 43,20,000 है। यह गणना कात्यायन की ऋक् सर्वानुक्रमणी के आधार पर की गई है। ऋग्वेद की भाषा तथा विषय के गंभीर विवेचन के उपरांत विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक के सूक्त अपेक्षाकृत प्राचीन है। पाश्चात्य विद्वान इस अंश को वंश मंडल के नाम से अभिहित करते हैं। इनमें प्रत्येक मंडल का संबंध एक एक ऋषि के साथ है। द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्स्मत, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, षष्ठ के भारद्वाज और सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ हैं। नवम मंडल के ऋषि इन्हीं ऋषियों में से हैं। प्रथम और अष्टम मंडल समकालीन प्रतीत होता है। दशम मंडल सर्वाधिक अर्वाचीन है, क्योंकि इस मंडल के सूक्तों में स्थान स्थान पर मंडलों के सूक्तों का उल्लेख प्राप्त होता है। भाषा की दृष्टि से भी इस मंडल को अन्य मंडलों से अर्वाचीन सिद्ध किया जाता है। प्रतिपाद्य, ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं का वेद। छंदोबद्ध मंत्रों का ही नाम ऋक या ऋचा है। वेद का अर्थ ज्ञान है, अतः ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ ऋचाओं का ज्ञान। यद्यपि अन्य वेदों में भी ऋचाओं का संकलन हुआ है, परंतु ऋग्वेद में केवल ऋचाओं का ही संकलन है। ऋचाओं से देवताओं की स्तुति की जाती है। इस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र को पढ़कर देवताओं की स्तुति करना ही इस वेद का मुख्य प्रयोजन है। किंतु ऋग्वेद में देवस्तुति के साथ ही साथ ब्रह्म विद्या, धार्मिक विचार, व्यवहार एवं मान्यताओं के उद्घाटन भी प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं पर भी पर्याप्त प्रकाश ऋग्वेद के अध्ययन से पड़ता है। ऋग्वेद में सृष्टि रचना, दार्शनिक विचार, वैवाहिक रीति रिवाज, पशु पक्षी तथा वृक्षों आदि से संबद्ध कुछ मंत्र भी मिलते हैं। ऋग्वेद में कुछ संवाद सूक्त भी उपलब्ध होते हैं। संपूर्ण ऋग्वेद से मात्र 40 सूक्त इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं, जिनमें ऊपरी कथित विषय अनुस्यूत हैं, अन्यथा ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्रों से परिपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद में हिंदू धर्म के सभी तत्व मूल रूप में विद्यमान है। ऋग्वेद वस्तुतः हिंदू धर्म और दर्शन की आधारशिला है। भारतीय कला एवं विज्ञान के उदय का संकेत भी यही पर प्राप्त होता है। विश्व के मूल में रहकर विश्व को नियंत्रित करने वाली मूल सत्ता के व्यक्त तथा अव्यक्त रूप में विश्वास, मंत्र, यज्ञ आदि से अनेक पूजन, यजन और मौलिक धार्मिक तत्व ऋग्वेद में पाए जाते हैं। इसी प्रकार तत्वों की जिज्ञासा, तत्वों के रूपकात्मक वर्णन, मानव जीवन की आशंकाओं, आदर्शों तथा मान्यताओं आदि पर ऋग्वेद के अध्ययन से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दर्शन की मूल समस्याओं, ब्रह्म, आत्मा, माया, कर्म, पुनर्जन्म आदि के ज्ञान के स्रोत भी ऋग्वेद में प्राप्त हो जाते हैं। देववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, अद्वैतवाद आदि दार्शनिक वादों का बीज भी ऋग्वेद में ही दिखलाई पड़ता है। दो यजुर्वेद संहिता, जिस वेद में यजुषों का संकलन है उसे यजुर्वेद कहा जाता है। यजुष का अर्थ है गद्यात्मक मंत्र। गद्यात्मको यजुह या अन्यता क्षरावसानो यजुह, ये वाक्य यजुष का लक्षण निर्दिष्ट करते हैं। यद्यपि इस वेद में भी ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का संकलन है, परंतु वे मंत्र कहीं कहीं किंचित परिवर्तन के साथ ही ग्रहण किए गए हैं। यह ग्रंथ पद्धति ग्रंथ है जो पौरोहित्य प्रणाली में यज्ञ क्रिया को संपन्न करने के लिए संग्रहित हुआ है। पद्धति ग्रंथ होने के कारण यह अध्ययन का सुप्रचलित विषय बन गया है। इसकी अनेक शाखाओं का संकेत प्राप्त होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने एक शतमध्वर्यु शाखा कहकर इसके 101 शाखाओं की ओर संकेत किया है। यजुर्वेद में मानव मात्र को प्रशस्ततम कार्यों में प्रवृत्त कराने वाले मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद के संप्रदाय, यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, शुक्ल यजुर् संप्रदाय और कृष्ण यजुर् संप्रदाय। शुक्ल यजुर् संप्रदाय का प्रतिनिधि शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर् संप्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित चार शाखाओं के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, कठ, कपिष्ठल, मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन और काण्व दो शाखाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार विद्वानों ने यजुर्वेद के दो भेद स्वीकार किए हैं। अब संक्षेप में इनका निरूपण किया जा रहा है। एक, शुक्ल यजुर्वेद संहिता अधिक क्रमबद्ध होने से शुक्ल कहलाती है। दो, इस संहिता में ब्राह्मणात्मक गद्य का सर्वथा अभाव है। दूसरी ओर कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रात्मक गद्य पद्य के साथ ही साथ ब्राह्मणात्मक गद्य का भी पर्याप्त समावेश है। मंत्र और ब्राह्मण के सम्मिश्रण के कारण यजुर्वेद का एक भेद कृष्ण तथा सम्मिश्रण से रही शुद्ध मंत्र होने के कारण द्वितीय भेद शुक्ल नाम से अभिहित हुआ। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वासनी संहिता। परंपरा अनुसार मध्य दिन में इनका ज्ञान दिए जाने के कारण माध्यान्दिन संहिता भी इस संहिता को कहा जाता है। यजुर्वेद में यजुषों का संकलन, यजुष का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, पूजा, श्रद्धा आदि। इस प्रकार वेद का वह भाग जिसका संबंध यज्ञ, पूजा आदि से है यजुष कहलाता है। इस वेद के मंत्रों का पाठ यज्ञ में अध्वर्यु संज्ञक पुरोहित वर्ग करता है। इसकी वाजसनेयी संहिता में 40 अध्याय हैं। प्रारंभिक 25 अध्याय विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञ के मंत्र संकलित हैं। तृतीय अध्याय में दैनिक अग्निहोत्र तथा चातुर्मासी यज्ञ के मंत्रों का संग्रह है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय पर्यंत अग्निष्टोमादि सोम यज्ञों एवं पशु बलि से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। कतिपय एक दिन में समाप्त होने वाले यज्ञ भी सोम यज्ञों की परंपरा से प्राप्त हैं। इनमें वाजपेय सर्वप्रधान है। इस यज्ञ का संपादन राजा अथवा योद्धा लोग करते थे। सोम यज्ञों की ही परंपरा में राजाओं द्वारा संपाद्य राजसूय यज्ञ भी है। उपर्युक्त दो प्रकार की प्रार्थनाएं वाजसनेयी संहिता के नवम तथा दशम अध्याय में की गई है। एकादश से अष्टादश अध्याय तक अग्नि चयन के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं तथा विविध याज्ञिक नियमों का संग्रह है। अग्निचयन के निमित्त निर्मित होने वाली अग्निवेदिका का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। 19वें तथा 20वें अध्याय में सौत्रामणि उत्सव के प्रयोग से संबंधित मंत्रों का संकलन है। 21वें से 25वें अध्याय तक अश्वमेघ यज्ञ की प्रार्थनाओं का संग्रह किया गया है। 26 से 40 तक की रचना अपेक्षाकृत अर्वाचीन है, ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का मत है। इसमें 26 से 35 अध्याय तक खिल सूक्त हैं। खिल का अर्थ परिशिष्ट है। 30वें अध्याय में यद्यपि किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं है, तथापि पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन इसी अध्याय में है। पुरुषमेध यज्ञ में बलि के उपयुक्त व्यक्तियों की गणना कराई गई है। 31वां अध्याय भी इसी प्रकार का है। इसमें ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त संकलित है। 32वें अध्याय से 34वें अध्याय में अंत्येष्टि क्रिया से संबंध ऋचाएं हैं। 36वें से 39वें अध्याय तक प्रवर्ग्य यज्ञोत्सव की प्रार्थनाएं संकलित हैं। 40वां अध्याय प्रसिद्ध उपनिषद ईशावास्य उपनिषद के नाम से विख्यात है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता मंत्र ब्राह्मणात्मक कृष्ण यजुर्वेद में कुल 18,000 मंत्र मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता ही इसकी प्रधान संहिता है, जिसमें 7 अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में 7-8 अध्याय हैं। अध्याय का दूसरा नाम प्रश्न तथा अष्टक का दूसरा नाम प्रपाठक भी है। प्रत्येक अध्याय में अनेक अनुवाक हैं तथा अनुवाकों की संपूर्ण संख्या लगभग 700 है। चरण व्यूह के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं थी। कृष्ण यजुर्वेद का विषय वस्तु शुक्ल यजुर्वेद से मिलता जुलता है, अतः उपर्युक्त विवेचन से ही कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिपाद्य का भी आभास मिल जाता है। 3. सामवेद संहिता, जिस वेद में गेय मंत्रों का विशिष्ट प्रकार से संकलन किया गया है उसे सामवेद कहा गया है। सामवेद का महत्व प्रतिपादित करते हुए बृहद देवता नामक ग्रंथ में कहा गया है, सामान्यो वेत्ति स वेद तत्त्वम्, अर्थात जो व्यक्ति साम को जानता है वही वेद के तत्व का ज्ञान है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद स्वरूप कहा है, वेदानाम सामवेदोऽस्मि। अनेक ग्रंथों में साम शब्द का प्रयोग ऋचाओं के ऊपर गाए जाने वाले गान के लिए प्राप्त होता है तथा ऋग्वेद के मंत्रों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग यत्र तत्र प्राप्त होता है। सामवेद के मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर उद्गाता नामक पुरोहित तार स्वर से आवश्यकता अनुसार गान करता है। शाखाएं, सामवेद में 75 मंत्रों को छोड़कर सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं थी। महाभाष्यकार पतंजलि ने सहस्त्र वर्तमा सामवेद कहा है। चरण व्यूह में शौनक सामवेद के 1000 शाखाओं को निर्दिष्ट करते हैं, जिनमें से अनेक शाखाएं अनध्याय के समय पढ़े जाने के कारण इंद्र द्वारा वज्र प्रहार करके नष्ट कर डाली गईं। सामवेदस्य कील सहस्त्र भेदाः भवन्ति एष अनध्यायेषु अधियानः ते शतक्रतुः वज्रेणाभिहतः। संप्रति इन शाखाओं में से आसुरायणीय वासुरायणीय वार्तांतवेय प्रांजल ऋग्वर्ण भेदाः प्राचीन योग्य ज्ञान योग्य तथा राणानीय आदि नामों का उल्लेख मिलता है। सामवेद के पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो भाग हैं। इनमें प्राप्त होने वाली 75 को छोड़कर सभी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं को पृथक करने पर ऋचाओं की वास्तविक संख्या 1549 रहती है। 75 मंत्र को छोड़कर शेष सभी ऋचाएं ऋग्वेद संहिता के अष्टम एवं नवम मंडल से ली गई हैं। इन ऋचाओं की रचना गायत्री एवं प्रगाथ छंद में हुई है। सामवेद संहिता के पूर्वार्चिक में 650 ऋचाएं हैं। इसमें 6 प्रपाठक हैं। प्रथम प्रपाठक में अग्नि विषयक ऋचाओं का संग्रह है, अतः इसे आग्नेय कांड कहते हैं। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक तक इंद्र पर्व कहा जाता है, यहाँ पर इंद्र से संबंधित ऋचाएं हैं। पंचम प्रपाठक में सोमपरक ऋचाएं हैं, अतः इसे पवमान पर्व कहा गया है। छठा प्रपाठक आरण्य पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य जैमिनी गीति को ही साम मानते हैं। गीति के प्राण है स्वर, ऋचाओं को सामगान तथा मूलाधार या योनि कहा गया है। सामवेदी ऋचाओं को संगीत में करने के लिए कतिपय शब्दों को जोड़ा जाता है, इन्हें स्तोभ कहा गया है। कतिपय स्तोभ शब्द इस प्रकार हैं, हाऊ औऊ हो होई। ये स्तोभ उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे संगीतज्ञ आलाप के लिए कुछ शब्दों का उच्चारण करता है, इन्हें साम विकार भी कहा गया है। ये विकार 6 प्रकार के हैं, विकार विश्लेषण विकर्षण अभ्यास विराम तथा स्तोभ। 4. अथर्वेद संहिता, संपूर्ण अथर्व संहिता में 20 कांड हैं। सभी कांडों को 38 प्रपाठकों में विभक्त किया गया है। इसमें 760 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। किसी किसी शाखा से संबंधित संहिता में अनुवाकों के आधार पर विभाग प्राप्त होते हैं। अनुवाकों की संख्या 80 है। प्रथम कांड से लेकर 7वें कांड तक मंत्रों का क्रम विषयानुकूल नहीं है, केवल मंत्रों की संख्या के अनुसार सूक्तों का क्रम बांधा गया है। प्रथम कांड में 4-4 मंत्रों का क्रम है, दूसरे में 5-5 का, तीसरे में 6-6 का, चौथे में 7-7 का, परंतु पांचवें में 8-18 मंत्रों का क्रम है, छठे में 3-3 का क्रम है, सातवें में बहुत से अकेले मंत्र हैं और 11-11 मंत्रों तक का भी समावेश है। आठवें से लेकर 20वें कांड तक लंबे सूक्त हैं जो संख्या में 50-60-70 तथा 80 तक चले गए हैं। अथर्वेद के 13वें कांड तक विषयों का कोई क्रम निश्चित नहीं है, उनमें विशेष रूप से प्रार्थनाएं हैं, मंत्र और प्रयोग तथा विधियां हैं। इन विधियों और प्रयोगों से सब तरह के भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकिनी शाकिनी वेताल आदि से रक्षा की जाती है। जादू टोना करने वालों सर्पों नागों और हिंसक जंतुओं से तथा रोगों से बचाव होता है। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि प्रयोगों के लिए भी मंत्रों का संकलन इसी भाग में हुआ है। 14वें कांड में विवाह की रीतियों का वर्णन है। 15वें 16वें तथा 17वें कांडों में कतिपय विशिष्ट मंत्र हैं। 18वें में अंत्येष्टि क्रिया की विधियां तथा पितरों के श्राद्ध की रीतियां हैं। 19वें में विविध मंत्रों का संकलन है। 20वें में इंद्र संबंधी सूक्त हैं जो ऋग्वेद में भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अथर्वेद शत्रु विनाश आत्मरक्षा तथा विपद निवारण आदि कार्यों के मंत्रों से भरा पड़ा है। वर्तमान तांत्रिक प्रयोगों का उद्भव भी इसी वेद से हुआ है। सृष्टि प्रक्रिया तथा ब्रह्म विद्या से संबंधित अनेक रहस्यपूर्ण तथ्य भी इस वेद में यत्र तत्र प्राप्त होते हैं, जिनका और विकास आगे चलकर ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में हुआ है।